ओम शांति। सभी ने ज्ञान सरोवर परिसर में अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा किया है। वैसे तो संगम युग श्रेष्ठ कर्म करने की वेला है। इस समय जितने श्रेष्ठ कर्म हम कर सकते हैं उन श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही सतयुग और त्रेता में आधा कल्प प्रारब्ध प्राप्त होती है। वहां पर कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, और अगर कोई कर्म करते भी हैं तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म नहीं बनते। द्वापर और कलयुग में जो कर्म हुए वो देह अभिमान के कारण हुए, किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर के कर्म किए, इसलिए वो कर्म विकर्म बनते गए, पाप कर्म बन गए। संगम युग पर जब बाबा हम बच्चों को मिले, हमें श्रेष्ठ कर्मों की कला सिखाई। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा से करके फिर हम बच्चों को सिखाया। शुरू से ही अगर हम सब ब्रह्मा बाबा की जीवन को, उनकी जीवन कहानी को देखें, पढ़ें, पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे गुप्त श्रेष्ठ कर्मों से अपना बहुत ऊंचा भाग्य बनाया। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद प्राप्त करे। करनी कर्म जो ब्रह्मा बाबा ने किए, शिव बाबा कहते हैं बच्चे साकार में तुम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तुम्हें कोई नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को फॉलो करते चलो, कर्म रूपी कदम पर कदम रख करके चलो। तो क्या ये कर्म केवल हाथों से करने वाले कर्म ही कर्म कहलाते हैं, या कर्म कर्म क्षेत्र पर जो भी कुछ हम कर रहे हैं? कई बार बाबा एक बहुत सुंदर स्पष्टीकरण देते हैं। कुछ लोग इस कर्म क्षेत्र पर अपने आप को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे कर्म सन्यास नहीं होता। कोई भी आत्मा जब इस शरीर में आई है, वो सांस ले रही है, भोजन कर रही है, चल फिर रही है, बातचीत कर रही है, वो भी कर्म ही है। इसलिए कर्म सन्यास नहीं होता। केवल वो लोग अपने हाथ से भोजन नहीं पकाते इसलिए कहते हैं हम कर्म सन्यासी हैं, दूसरों के बनाए हुए भोजन को खा लेते हैं। हम सब बाबा के बच्चे इस समय संगम युग पर बाबा से श्रेष्ठ कर्म करने की कला सीखते हैं, और सभी ने अगर कोई भी कर्म किए हैं, कर्म योगी बन करके किए हैं, कर्म के अभिमान में नहीं आए हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म में आएगा। अगर कर्म किया जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ किया, ब्रह्मा बाबा के समर्पण होने से 14 साल तक 400 बच्चों की पालना हुई। बहुत गुप्त रीति से बाबा ने अपने आप को समर्पित किया। जो भी उनके पास शक्ति थी, धन था, तन मन धन सब समर्पित करके खुद ट्रस्टी बन गए। कोई भी बात की परवाह नहीं, सब बहनों के माताओं के हवाले किया। और उस कर्म का इतना श्रेष्ठ कर्म, उस कर्म का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। कभी नहीं कहा कि बच्चे मैंने बहुत कुछ किया है, मेरी कमाई से इन बच्चों की पालना हो रही है। कभी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुनाते हुए वर्णन भी कर दिया हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी के पास तक भी खबर नहीं लगने दी कि ब्रह्मा बाबा ने कितना अपने आप को समर्पित किया। और सदा यही कहते रहे बच्चे, गुप्त दान महापुण्य, दो बाबा के स्लोगन रहे, एक गुप्त दान महापुण्य, दूसरा तुरंत दान महापुण्य। कोई भी संकल्प उठता है, डिले नहीं करो, कर लेंगे दो दिन में, चार दिन में, उसके बीच में कहीं ना कहीं माया इंटरफियर कर देगी। इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा आए, तन मन धन, जो बाबा की दी हुई अमानत है, अपना तो नहीं रहा ना, हमने क्या कहा, ये सब बाबा तेरा है। भक्ति में भी कहते थे कि ये सब कुछ बाबा तेरा है, और ये भी कहा कि जब आप आएंगे तो हम तेरे पर पूरा बलिहार जाएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर वो समझते थे तो मूर्तियां हैं, वहां मूर्तियों के आगे वायदा किया, संकल्प किया, और घर में आए तो भगवान की भी संपत्ति को कहा तेरा भी मेरा है। लेकिन संगम पर ये चालाकी नहीं चलती, क्योंकि बाबा डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट अपने बच्चों से संकल्प करवाते हैं, आपका जो भी पुराना कखपन है, जिसको कखपन कहें, कणा दाना जो हमारे पास है, वो बाबा के आगे समर्पित करते हैं, बाबा ये सब तेरा है। और जब तेरा शब्द कह देते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वीकार किया मैंने, लेकिन अब इसको अमानत के रूप में मैं तुमको रिटर्न करता हूं, ये जो भी शक्ति आपके पास है ये प्रभु अमानत है, ये तन मन, स्थूल में धन या ज्ञान धन, संबंध संपर्क, सब कुछ जो भी हमारे पास है वो सब किसकी अमानत, बाबा आपकी अमानत है। और जब अमानत किसी के पास होती है तो उस अमानत को बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन से संभालना पड़ता है, कहीं कोई चीज नुकसान न हो जाए, कहीं व्यर्थ न चली जाए। हम सबको बाबा ने अमानत के रूप में शरीर दिया, हम इसकी संभाल कर रहे हैं और इसको बाबा की सेवा में ही लगा रहे हैं, कहीं भी इधर उधर व्यर्थ में तन की शक्ति न जाए, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी। हम सब इस बात को बहुत अंडरलाइन करें कि बाबा ये तन तेरा है, तूने मुझे दिया, अब इससे मैं अच्छे से अच्छी विश्व कल्याण की सेवा करूं, आपके नई सृष्टि बनाने के काम में तन की कुछ शक्ति अगर लग जाए तो ये मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा, 21 जन्मों के लिए भाग्य जमा हो जाएगा। तो तन अगर शक्तिशाली है, हमको याद है कई जगह पर सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे घरों की माताएं आती हैं, जिन्होंने अपने घरों में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं किया, मजदूरों से कराया, उनके पास नौकरानियां हैं, नौकर हैं, लेकिन सेंटर पर आकर के कहती हैं दीदी मुझे सेवा दो, मैं बर्तन मांज दूं, मैं सफाई कर दूं, मैं कोई कर्मणा सेवा कर दूं, मेरा भी भाग्य बन जाएगा। ये भी एक समझ बाबा देते हैं कि बच्चे जितना तन बाबा के कार्य में लगेगा उतना ये तन बहुत निरोगी बन जाएगा, संगम पर ही उसका अनुभव होगा। किसी ने भी अगर बाबा के कार्य में तन लगाया है, हम लोगों को ये बहुत अच्छे अनुभव हैं, बाबा ने इस तन को बहुत अच्छी तरह से इस सेवा में सफल कराया है, जब से समर्पित हुआ 71-72 में सब प्रकार की कर्मणा सेवाएं ही की, और वो सेवाएं करते इतनी खुशी का अनुभव, बड़ों की दुआओं का अनुभव, शक्ति का अनुभव किया, तन अपने आप स्वस्थ निरोगी बनता गया, दुआएं मिलती गई, मन मनाभाव एक बाबा में लगा रहे, एक बाबा की याद के सिवाय किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित न हो, मन में मेरे दिल में मन में एक बाबा, दूसरा न कोई। मन जितना बाबा में एकाग्र है, एक बाबा में ही टिका हुआ है, उनकी यादों में समाया हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, ये भी श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। कैसे सेवा है? जैसे आप अभी एक घंटा दो घंटा योग करते हैं, बैठते हैं, तो योग में जितनी एकाग्रता बढ़ती है, जितना हम उस शांत स्वरूप स्थिति में बैठते हैं, भले हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे शांति के पवित्र संकल्पों के वाइब्रेशंस इस पतित वायुमंडल को अपने आप परिवर्तन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी सेवा हम योग में बैठ करके करते हैं। बाबा कई बार कहते, बच्चे केवल अपने लिए थोड़ी कर रहे हो योग। कई सोचते हैं हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कर रहे हैं, हमारी आदतें चेंज हो जाएं, वो भी एक लक्ष्य अच्छा है, और उस लक्ष्य को सामने रख करके योग अभ्यास हमको करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसे भी साइलेंस में बैठ जाते हैं, तो अच्छे संकल्प, अच्छे पवित्र विचार जो मन में आते हैं, उससे एक आभा मंडल बनता है, उससे चारों तरफ हमारे अच्छे पवित्र वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। वायुमंडल में जो इम्प्यूरिटी है, जो अशांति है, जो दुख है, जो आत्माएं बहुत भटक रही हैं, प्रकृति एकदम तमोप्रधान बन गई है, उसको भी हमारी साइलेंस, हमारे शांति के पवित्र प्रकंपन शक्ति देते हैं। ये भी एक बहुत श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा कहलाता है। ये सेवा भी हमारे बहुत पुण्य के जमा के खाते को बढ़ाती है। इसलिए याद में बैठना, लेकिन याद यथार्थ हो, याद अलर्ट रह करके की जाए, वो झुटके वाली याद नहीं चाहिए। मन भटक रहा है, बुद्धि इधर उधर जा रही, बैठे हैं, वायुमंडल को खराब कर रहे हैं, उससे और बोझ चढ़ता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, जब हम संगठन में बैठते हैं तो बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। संगठन में अगर हमारे को देख करके कोई के संकल्प चले, क्या कर रहा है, ये सो रहा है, ये झुटका खा रहा है, ये क्या कर रहा है, तो भी एक बोझ चढ़ता है। इसलिए संगठित होकर के अगर कोई बहुत शक्तिशाली याद में बैठता है, एक बाबा की याद में बैठता है, तो वो एक ज्वाला क्रिएट होती है, योग अग्नि बनती है, और उस योग अग्नि से पहले हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, और दूसरी तरफ जो उसकी शक्ति है, उसकी सकाश है, वो प्रकृति के तत्वों को, अनेक दुखी अशांत आत्माओं को शक्ति देती है, शीतल बनाती है, अच्छे वाइब्रेशन उनको सुख का अनुभव कराते हैं। एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है योग में बैठना। और साथ साथ बाबा कई बार साकार मूल्यों में कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ कार्य संगम ऊपर है, किसी को बाप का सत्य परिचय देना। आत्माएं भटक रही हैं, आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, अंधकार में हैं, उनको प्रकाश की ओर ले आना, उनको बाबा का सत्य ज्ञान दे देना, सत्य पहचान दे देना, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। जो कर्म हम सब वाचा द्वारा भी करते हैं, ज्ञान दे करके बाबा की तरफ उनका कनेक्शन जुटाते हैं, लेकिन कई आत्माएं ज्ञान दे करके अपने में फंसा लेती हैं, वो भी ध्यान देना, बोझ चढ़ता है। बाबा का परिचय देना, बाबा की सत्य पहचान दूसरी आत्माओं को दे करके उन्हें बाबा की तरफ जोड़ना, न कि बीच में। कई लोग बाबा बहुत रमणीकता से कहते हैं कि मेरे बच्चे बीच में दलाली बहुत ले लेते हैं, मेरा नाम हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, मैंने इतना इनको समझाया, मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने इनकी पालना की, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अगर उसमें मैंपन आ गया, कहीं भी मैंपन आ गया, मिक्स हो गया, तो वो कर्म, बाबा एक बार बहुत कड़े शब्द बोले हैं अव्यक्त बाबा ने, कि अगर कोई भी श्रेष्ठ कर्म के बीच में मैं आ गया, तो ये मैं मैलापन है, ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है, ये विकर्म कहलाता है। इसलिए हम सब ब्राह्मणों को बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि बाबा हमें कर्मों की गहन गति सिखा रहा है, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि भी बता रहा है, और कोई भी कर्म अगर देहमान में आकर के किया गया, मान लो कई लोग होते हैं स्नेही होते हैं सहयोगी होते हैं, लेकिन जहां कोई अच्छी रूप रंग वाली बहनें हैं, जहां कोई आकर्षण करने वाली चीजें हैं, उस तरफ झुकाव हो जाता उनका, और वो झुकाव प्रभाव किसी आत्मा का, जिसके कारण उस स्थान पर हम सहयोग दे रहे हैं, वो सहयोग वो मदद वो सेवा श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाती, वो भी विकर्म के खाते में डाल देता है बाबा। इसलिए कर्मों की गति को समझना कि किसी देहधारी के देह को देख करके, विशेषताओं को देख करके, उसके रूप रंग को देख करके मैं सहयोगी बन रहा हूं, उसको साथ दे रहा हूं, उसको मदद कर रहा हूं, और मैं समझता हूं मैं तो श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है, वो भी एक पाप कर्म में, साधारण कर्म में भी आता है। इसलिए कर्मों की गति को समझ करके संगम युग पर जो आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कर्म किए जाएं, चाहे वो हमारे संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म हैं, वो कर्म जो आत्म अभिमानी स्थिति में किए जाते हैं, जो बाबा की याद में रह करके किए जाते हैं, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों का फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, हमने कर्म किया है हमें अभी अभी इसका रिटर्न मिले। कई लोग कुछ कर्म करते हैं, मान लो कोई ने आज अच्छा सा सेंटर बनवा दिया, कई बाबा के ऐसे स्नेही सहयोगी बच्चे होते हैं, भले रेगुलर नहीं है, क्लास नहीं करते हैं, धारणाएं नहीं कर पाते हैं, नियम मर्यादाएं भी नहीं पालन करते, लेकिन एक उनकी भावना होती है कि मैं कुछ इस श्रेष्ठ कार्य में मदद करूं, सहयोग दूं। लेकिन उस भावना के पीछे तीन शब्द मैं कह रहा हूं आपको, ध्यान देना, भाव, भावना और स्वभाव। हमारा भाव क्या है, किस भाव से हम सेवा दे रहे हैं, किस भाव से हम सेंटर बनाना चाहते हैं, किस भाव से हम मदद करना चाहते हैं, नाम मानसान का भाव है, या हमारी खातरी होगी, हमें पूछा जाएगा, हमें स्टेज मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा, वो भाव है, या निस्वार्थ भाव है, सच्चे दिल का भाव है कि भगवान का कार्य चल रहा है, स्थापना का कार्य चल रहा है, कुछ मेरा भी सफल हो जाए, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं तो कम से कम कुछ धन से सहयोग दे करके बाबा की तरफ से, परिवार की तरफ से, बड़ों की तरफ से दुआएं ले सकता हूं। तो उसमें हमारा भाव क्या है, और भाव के पीछे हमारी भावनाएं क्या हैं, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मेरा शान हो। जैसे आजकल आप देखो भक्ति मार्ग में भी लोग श्रेष्ठ कर्म किसको मानते हैं, दान को श्रेष्ठ कर्म मानते हैं, लेकिन दान के पीछे उनकी भावनाएं क्या हैं उस पर बहुत असर पड़ता है। क्या भावनाएं होती हैं, मान लो आज कोई ने मंदिर में दान किया, मंदिर बन रहा है, कहा हमारी तरफ से मार्बल लगवा दो, लेकिन मार्बल लगवा दो या एक दरवाजा लगवा दो या दीवार बनवा दो और उसके ऊपर अपना नाम अंकित करा दो, क्योंकि आजकल इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। कोई एक टुकड़ा भी संगमरमर का मार्बल का लगवाता है तो उसमें लिखा देता है स्वर्गीय फलाने फलाने दादा के नाम से, पिता के नाम से मैंने दान किया, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म भगवान के खाते में जमा नहीं होता, क्योंकि उसी समय किया और उसी समय उस फल को स्वीकार कर लिया, वो कच्चा फल किया, फल निकला, लेकिन महिमा हो गई, नाम हो गया, कोई ने कुछ और वर्णन कर दिया। कई लोग आजकल दानदाता होते हैं ना, बहुत अच्छा अच्छा दान करते हैं, लेकिन अगर तो उस दानदाता का सभा के बीच में नाम न लिया जाए तो उसकी खुशी गायब हो जाती है, वो सहयोग देना बंद कर देता है, वो सामने नहीं आता, कहता हमने इतना किया, हमारी क्या यहां वैल्यू है। ये जो अंदर की भावनाएं हैं, इन भावनाओं को चेक करना, संगम युग पर जिन श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए जमा हो रही है वो बहुत श्रेष्ठ कर्म है, गुप्त कर्म है, जिसके लिए बाबा ने कहा है बच्चे इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता न चले। दूसरा स्लोगन कहता है बच्चे नेकी करो दरिया में डालो, किसी के आगे वर्णन नहीं करो, ये श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। हम सब बाबा के बच्चे संगम युग पर जितने श्रेष्ठ कर्म करते हैं हमारा खजाना जमा होता जाता है, और जिसके पास जमा का खाता है, जमा की पूंजी है, मान लो आपने बहुत अच्छी धन की कमाई की है, साधन है, धन है, जमा किया है, कोई स्टॉक जमा कर ले अपने पास, और अंदर अंदर बड़ा नशा हो, खुशी हो कि मेरे पास इतना सब है, कुछ भी होगा, कोई भी परिस्थिति आएगी, मेरे पास सब जमा है, लेकिन उस जमा करने के जो भी जमा है उस पर अगर हमारा अटेंशन नहीं है, उसकी चेकिंग हम बीच बीच में नहीं करते हैं, तो हो सकता है अचानक जब उसको देखा जाए तो उसमें कीड़े लगे हुए हों, वो खत्म हो गया हो, अंदर अंदर सड़ गया हो, समझ रहे हैं मेरी बात। मान लो आपने अनाज का स्टॉक किया, हम कहते हैं भाई हमारे सेंटर्स पर या अपने घरों में प्रवृत्ति वालों को कम से कम 3 मास का 6 मास का स्टॉक रखना चाहिए, कभी अचानक कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कर्फ्यू लग जाते हैं, बाढ़े आ जाती हैं, कोई लड़ाइयां चढ़ जाती हैं, तो ऐसा न हो उस समय आपको दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े, अपने पास थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन जो रखा है, मान लो आपने जमा करके रखा और उस पर आपकी नजर नहीं है, 6 महीना 5 महीना पड़ा है अंदर, और अंदर पड़े पड़े वो सड़ रहा है या उसमें घुन लग गए हैं, तो क्या हो गया, वो स्टॉक खत्म हो गया, खाली हो गया। ऐसे ही कई बाबा के बच्चे जमा तो कर रहे हैं, तन से जमा कर रहे हैं, मन से अच्छे अच्छे विचार करके जमा कर रहे हैं, धन बाबा के काम में लगा रहे हैं, समझते हैं हमने तो बहुत पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य का खाता हमारा जमा है। लेकिन अगर अटेंशन नहीं है और कहीं पर उसमें मैंपन का कीड़ा लग गया, मैंने जमा किया, मेरा है, वो मैंपन का कीड़ा वो घुन कहलाता है, और वो धीरे धीरे अंदर जमा के खाते को समाप्त कर देता है। हम समझते हैं हमारे पास बहुत है, लेकिन जब समय आता है उस समय ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब खाली है, काम में नहीं आ रहा है। इसलिए इस संगम पर बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की बहुत सुंदर विधियां बताई हैं। सबसे पहली विधि यही है कि जो कुछ कर्म करो उस कर्म में कर्तापन का भान नहीं रहना चाहिए। शिव बाबा इतना सब कुछ करता है और कहलाता क्या है, अकर्ता है। करण करावन हार है, कर भी रहा है, बच्चों से करा भी रहा है, लेकिन कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं दुख भी नहीं देता हूं, मैं सुख भी नहीं देता हूं, लेकिन दुख हरता सुख करता कहलाता जरूर। क्यों? बच्चों को सही दिशा बताता है, मार्ग बताता है। सही मार्ग पर चलोगे तो सुख है, लेकिन नहीं चलोगे, दूसरे मार्ग पर जाओगे तो दुख ही दुख है। बाबा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बच्चों को मार्ग बताया, रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाना आपकी प्रवृत्ति में, अपने बच्चों को रास्ता दिखाना आपका फर्ज है, लेकिन उनका चलना या न चलना उनके कर्म है, उनका हिसाब किताब है। अगर आप अधिकार रखोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। कई माताओं को, परिवार वालों को बहुत अपना परिवार इतना प्यारा है, मोह भी होता है, अटैचमेंट होती है, खुद ज्ञान में चलते हैं, पवित्र जीवन जीने लगते हैं, शाकाहारी बन जाते हैं, और बच्चों के ऊपर भी बहुत अधिकार रख करके कहते हैं जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा तुमको भी करना है, और अगर वो नहीं करता है तो क्या होता है, टेंशन पैदा होता है, कलह हो जाती है, कलेश हो जाता है, घर घर के अंदर खुशी गायब हो जाती है, कि क्या सोचने लगते हैं, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसको पढ़ाया, योग्य बनाया, पांव पर खड़ा किया, ये मेरा कहना नहीं मानता, अंदर अंदर दुखी अशांत, और जोर जबरदस्ती करते हैं तो और गलत हो जाता। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कर्मों की गहन गति है, तुम बच्चे बाबा की तरह साक्षी होकर के जिनको बड़ा किया है, पालना की है, जन्म दिया है, उनको सही मार्ग दिखाओ। इस रास्ते पर चलने से सुख है, इस रास्ते पर चलने से दुख है। बाबा तिवाटे का एक नाम लेते हैं, सुना होगा, तीन रास्ते जहां मिलते हैं उसको तिवाटा कहते हैं। जैसे चौराहा होता है, चार रास्ते मिलते हैं, लेकिन आजकल तिवाटे की भी कलयुग में पूजा होती है, वहां पर भी लोग दीपक जला करके तेल डाल के आते हैं। बाबा ने हम सभी बच्चों को इस समय तिवाटे पर खड़ा किया है, तीन रास्ते मिल रहे हैं। एक तरफ दुखधाम है, दुखधाम का रास्ता है, और दूसरी तरफ सुखधाम का रास्ता है, और तीसरी तरफ मुक्तिधाम का रास्ता है। और तिवाटे पर खड़ा करके मेरे अपने बच्चों को कहता है, बच्चे तुमको क्या चाहिए? अगर मुक्ति चाहिए कोई बात नहीं, तुम बाबा को याद करते रहो, भले कोई सेवा करो या ना करो, पवित्र रहो और बाबा को याद करो, मुक्ति में तो चले जाओगे। लेकिन अगर दूसरा जीवन मुक्ति का रास्ता चाहिए, सुख का रास्ता चाहिए, तो धारणाओं के साथ साथ चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों सब्जेक्ट पर अगर पूरा ध्यान है और इन चारों सब्जेक्ट में आपकी फुल मार्क्स हैं, केवल एक में नहीं, तन मन धन संबंध संपर्क जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, अगर वो चारों सब्जेक्ट में हम उनको लगा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट में हम पास हो रहे हैं, तो जीवन मुक्ति में हमें ऊंच पद, श्रेष्ठ पद मिलेगा। इस समय की प्रारब्ध के आधार से बाबा कहते हैं, बच्चे इतना जमा कर लो जो तुम आधा कल्प तक रॉयल फैमिली में आओ। भले तख्त पर तो एक ही बैठेगा, लेकिन संगम युग पर जिसने परमात्म दिल तख्त को जीत लिया, तीन तख्त हैं, एक हम सबके पास है, वो तो हम सब अनुभव करते हैं, अकाल तख्त आत्मा का है। अकाल तख्त पर बैठ करके हम इस शरीर का संचालन कर रहे हैं, शरीर से कार्य कर रहे हैं, और अकाल तख्त की स्मृति से हम देही अभिमानी स्थिति बना सकते हैं। इस अकाल तख्त की स्थिति से मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, इस भान में रहने से कर्म इंद्रियों पर हमारा शासन हो जाता है, कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं, इसका हम अभ्यास करते हैं। लेकिन जितना हम अकाल तख्त पर बैठकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इस संगम पर श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप हम परमात्म दिल तख्त नसीन बन जाते हैं। हरेक ब्राह्मण बच्चे को इंसान की देहधारी के दिल को जीतने की जरूरत नहीं है। कई अभ्यास कर रहे हैं, दिल देहधारियों की जीत ले, बाबा कहता बीज को पकड़ो, झाड़ तुम्हारा हो जाएगा। एक एक पत्ते को, एक एक बीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। बीज रूप परमात्मा है, अगर उसको आपने राजी कर लिया, उसके दिल तख्त को जीत लिया, तो गारंटी है आप आधा कल्प के लिए विश्व राज्य का तख्त जीत लेंगे, राज्य अधिकारी बन जाएंगे। राज्य अधिकारी माना केवल राजा बनकर के नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए संगम पर हम सब परमात्म दिल को जीतने का पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो है श्रेष्ठ कर्म, और वो श्रेष्ठ कर्म जो आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके किए जाएं, जो बाबा की याद में रह करके किए जाएं, जिन कर्मों के परिणाम की इच्छा न रखी जाए। कई बार मान लो मैंने आज क्लास कराया, हम सुनना चाहते हैं लोगों से क्या लोगों की ओपिनियन है, कैसा लगा, और कोई बड़ी बड़ाई कर, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा, हम खुश हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए अगर किसी आत्मा ने अपनी प्रशंसा स्वीकार कर ली, उसका श्रेष्ठ कर्म खत्म हो गया। सुनने की भी इच्छा क्यों, बाबा को जो कहना है, जो कराना है, इतनी बुद्धि समर्पित करके बाबा के आगे इतना अपने आप को अर्पित कर देते हैं, बाबा जो आपको कहना है, जैसा कहना है, जो कहलाना है कह दो। अब उसकी महिमा हो या उसके कई प्रकार की कमेंट्स भी होती हैं, अगर हम महिमा में खुश होंगे और कमेंट्स हो जाएंगे तो उसमें खुशी गायब हो जाएगी, निराश हो जाएंगे, हमारे उमंग उत्साह कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे को भी लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, करेक्शन करते हैं, और दोनों प्रकार के लोग होते हैं, एक कमेंट्स करने भी वाले होते हैं, करेक्शन करने वाले भी होते हैं, दूसरे महिमा करने वाले, कई तो मक्कन लगाने वाले होते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा करते हैं। हम कई बार हद की प्रशंसा सुन करके बड़े प्रभावित हो जाते, खुश हो जाते हैं, और वो समझते हैं ये मेरा बड़ा शुभचिंतक है, उसको हम समीप रखना चाहते हैं, वो समझते हैं ये तो बड़ा अच्छा स्नेही है, सहयोगी है, और अगर थोड़ा भी कोई गलत नेगेटिव बात कर लेता है, कोई बात ऐसी वैसी कर देता है, तो उसको हम समझते हैं मेरा वैरी है, दुश्मन है, ये मेरी ग्लानी करता है, मेरे से दूर रहना चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर लेख जगदीश भाई जी ने लिखा था, मुझे याद रहता है हमेशा। उन्होंने कहा था, भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। समझ रहे मेरी बात, क्यों ऐसा कहा लिखा था उन्होंने लेख, कि जो दोस्त होते हैं, जिनके हम समीप बहुत रहते हैं, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हर बात में कुछ न कुछ आगे बढ़ाते हैं, ऐसे वो हमारी कमियों पर ध्यान नहीं खिंचवाते, और वो कमियों पर ध्यान न खिंचवाने के कारण हम जो गलतियां कर रहे हैं, भूलें हो रही हैं देह अभिमान के कारण, उसमें और पक्के होते जाते हैं। समझते हैं सब अच्छे लोग, सब हमको अच्छी कह रहे हैं, सब महिमा कर रहे हैं, कोई दो चार तो होंगे ही ऐसे, उनको हम निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, निंदक को नियरे राखिए, जो निंदा कहने वाले उनको नजदीक रखो, वो नजदीक होंगे तो आपका अपने ऊपर फुल अटेंशन रहेगा कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे कोई श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, क्योंकि ये सब मेरा नाम खराब कर देंगे, देख रहे हैं। कितना अटेंशन जाता है, कितना श्रेष्ठ कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है, इसलिए कभी भी कोई ग्लानी करता है, कोई निंदा करता है, ब्रह्मा बाबा ने कभी उसको मन पर नहीं लिया, ठीक है बच्चे तो निर्दोष हैं, इनका कोई दोस्त हो रही, इनको पता ही नहीं है कौन है ये। कभी कभी कोई कोई बच्चे बड़े जोश में आके कहते थे, बाबा इसके ऊपर हम केस कर दें, इतना ग्लानी कर रहा है, इतना उल्टा सीधा अखबारों में लिख रहा है, बोल रहा है। आजकल भी एक जगह से मेरे पास फोन आया, एक टीवी चैनल पर कोई बहुत उल्टा सीधा ब्रह्मा बाबा के लिए बोलता है, लोग सुनते हैं, बाबा के बच्चे सुनते हैं, तो उनको अंदर से आता है इसके ऊपर केस कर देना चाहिए। हमारे बाबा ने कितना पुण्य का काम किया है, कितना श्रेष्ठ कर्म किया है, इतने लोगों की जीवन बनाई है, चरित्रवान बनाया है, कितना महान कार्य किया है, और ऐसे महान आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, भगवान के रथ को लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, गुस्सा आता है, सोचते इसके ऊपर केस कर दो, मान हानि का ही केस कर दो। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे केस करो, मेरे से जब पूछा मैं केस करूं, हमने कहा भाई सोचो समझो, भगवान ने छुट्टी नहीं दी है, आज वो ग्लानी कर रहा है, कल महसूस करेगा, आपके ऊपर फूल चढ़ाएगा, महिमा करेगा। क्रोध करोगे उसके ऊपर, आप केस करोगे तो और वैर बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी, इसलिए क्यों दुश्मनी बढ़ा रहे हो, दुश्मन अगर हैं तो कभी योग नहीं लग सकता, इसलिए ध्यान दो, हमें दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। कोई है जो नहीं पहचाने हैं, जो हमारे नियम मर्यादाएं धारणाएं इतनी सख्त हैं, अगर हम पूर्ण रीति से उनका पालन करते हैं तो घर वाले ही विरोधी बन जाते हैं, साथी सहयोगी विरोधी बन जाते हैं, बड़े आए योगी, क्या इनको सिखा दिया गया है, इस उम्र में कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम ये करेंगे ये करेंगे, बाहर नहीं खाएंगे, कब तक। मैं आपको बताऊं, मेरे लौकिक में मेरे पिताजी को लोग बहुत भड़काने लगे, बहुत पक्के थे वो, निश्चय बुद्धि, उन्होंने बहुत भड़काया कि तुम्हारे भी बच्चे हैं देखेंगे, उनकी शादी करोगे, उनको ये करो, कहते हमारे बच्चे हैं ही नहीं, हमने तो भगवान को अर्पित कर दिए, वो जाने बाबा जाने, इतना निश्चय से जवाब देते थे, वो किसी की शादी में नहीं गए, किसी के मरने जीने में कहीं पर भी नहीं गए, मैं तो बाबा का हूं, बाबा के लिए समर्पित हूं, और उसी का फल है जो वो भी समर्पित हुए और हम दो ही बच्चे थे परिवार में, दोनों ही समर्पित हो गए। उनका जो निश्चय था कभी किसी लौकिक के पास नहीं ले गए, किसी लौकिक कार्य व्यवहार में नहीं गए कि हम तो भगवान के हो गए, हम तो इस दुनिया से मर गए। अब वो निश्चय अगर हमारे पास है तो ये जो निभाने के शब्द आते हैं ना, निभाना पड़ता है, करना पड़ता है, निभाओ, बाबा तो कहता है जरूर निभाओ, लेकिन ध्यान देना, तोड़ निभाओ, पहले तोड़ो फिर निभाओ, जोड़ करके नहीं निभाना, नहीं तो बंधन बन जाएगा, वो कर्म बंधन है। और कर्म बंधन में बंधी हुई आत्मा श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं कर सकती। अगर कोई कर्म बंधन बन रहा है, हम सब इस समय जो कर्म कर रहे हैं सिर्फ अटेंशन देना, वो कर्म बंधन न बन जाए, सेवा बंधन न बन जाए। ये मेरी सेवा है, ये मेरी एरिया है, मेरा स्थान है, अरे बंधन बांध रहे हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। लेकिन हद की इतने बंधन है, ये मेरा मेरा मेरा, और बाबा कहता तेरा फेरा लग गया, ऐसे ऐसे बंध गया तुम। कहां बाबा अपने बच्चों को कर्मातीत बनाना चाहता है, और कहां कोई कर्म करके, सेवा करके, मेरे स्टूडेंट, मेरी एरिया, मेरा स्थान, मेरा मेरा मेरा, सारा दिन कहां साथ ले जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। कर्म बंधन बना रहे हैं, और कर्म बंधन, सेवा का बंधन श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाता। इसलिए ध्यान देना, जमा का खाता अगर हमें बनाना है, बढ़ाना है, तो अटेंशन प्लीज, समर्पित करो बाबा को, बाबा आपने मेरा भाग्य बना दिया। कराने वाला करा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल चल रहा है, नाटक की तरह हम नाटक कर रहे हैं। जैसे कठपुतली का खेल देखा होगा हमारे राजस्थान में, एक स्थान पर उदयपुर में कठपुतली का डांस बड़ा फेवरेट है, सब देखने जाते हैं। अब कठपुतलियां कैसे सुंदर डांस करती हैं, नाचती हैं, लेकिन कैसे नाचती हैं वो कोई को दिखाई नहीं देता। वो एक धागा, पतले धागे में बंधी हुई होती हैं, और पीछे पीछे छिप करके बैठा हुआ उनको नचाता है, ऐसे ऐसे, और बहुत अच्छा डांस करता है, वाह वाह सब करते। कठपुतली डांस देख के आए हम, हमारी दादी जानकी कहती थी हम सब कठपुतलियां हैं, भगवान नचा रहा है, हम नाच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने किया, मैं कर रहा हूं। अगर ये भाव आ गया तो जितने श्रेष्ठ कर्म आपने किया सब पर पानी फिर गया। इसलिए बहुत ध्यान देना, हम 21 जन्मों की पूंजी जमा कर रहे हैं, 21 जन्मों के लिए कर्म हमारे इतने श्रेष्ठ हो जाएं जो कहीं कोई कर्म विकर्म न बने, कोई कर्म की सजा न खानी पड़े। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही आधा कल्प की प्रारब्ध, और बाबा कहते आधा कल्प नहीं लेकिन पौना कल्प, कम से कम 3/4 आप बच्चों को इस कर्मों के परिणाम स्वरूप सदा सुख की अनुभूति होगी। कलयुग के अंत में थोड़ा समय दुख शांति आती है, और फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे लोगों से तो आप भी अभी भी सुखी हो, अंतिम जन्म में भी, अंतिम जन्म में भी आप सुखी हो, क्योंकि संगम पर आपने इतने श्रेष्ठ कर्म किए जो इन श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध 84 जन्म तक आपकी चलती है। हम सब ध्यान दें कि संगम युग बीज बोने का युग है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का युग है। बीज बोने के समय कभी अलबेले नहीं हो जाना, बोलेंगे अभी तो समय पड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा। कई लोग सोचते सोचते रह जाते। मैं एक कहानी सुना के पूरा करता हूं। एक व्यक्ति बहुत बाबा का वारिस बच्चा, अच्छा था, उसने सेंटर बनाया, बहुत सुंदर मकान 3-4 मंजिल का बनाया, ऊपर के कमरे में रहने लगा, बहनों को नीचे सब व्यवस्था करके दिया, सब प्रकार के साधन बनाए। लेकिन मधुबन में उस भवन को रजिस्टर्ड नहीं किया, ब्रह्मा कुमारी के नाम से नहीं किया। हमारे बड़ों ने, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, हमारे रमेश भाई ने उनको बहुत समझाया, कोशिश की कि भाई तुम जीते जी इसको विल कर दो, ट्रांसफर कर दो। अरे हम मर थोड़ी जाएंगे, हम तो बैठे हैं ना, कर देंगे, क्या जल्दी है। अब इतना श्रेष्ठ कर्म उसने किया था, लेकिन अचानक हार्ट फेल हुआ और चला गया। वो उसको रजिस्ट्री नहीं किया, उसको विल नहीं किया, कुछ भी लिखित नहीं किया, और ज्यों मरा वैसे कहता था मेरा कोई नहीं है, वहां मरे हुए संबंधी जाग गए, आने लगे कि ये मेरे दादा का है, मेरे भाई का है, मतलब फलाने का है, मुझे खाली करके दो, मेरा है। और दादी को समाचार मिला, दादी कहती अभी अभी खाली करो। अब इतना श्रेष्ठ कर्म उसका क्या हो गया, खत्म, खाली करवा दिया दादी ने, कहा दे दो उसको, मुझे नहीं चाहिए। जीते जी अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सोचे हम कर लेंगे, हो जाएगा, और बाबा क्या कहते हैं, कल का भरोसा नहीं, काल का भरोसा नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है, और जब अचानक हो सकता है तो जो श्वासें हैं कम से कम उसमें जो कुछ हमने किया उसको सफल कर लें, सफल हो जाए। तन लगाया है तो तन सफल हो जाए, धन लगाया तो धन सफल हो जाए। अगर विधि पूर्वक कर्म किए जाए तो जमा का खाता जमा होगा, नहीं तो सब खाली हो जाएगा, किया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए हम सब कर्म के फल की इच्छा न रखें, जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं विधि पूर्वक करें, श्रीमत अनुसार करें, जो कर्म करें वो बाबा को समर्पित करें, कर्तापन का भान ना आए, मैंपन ना आए। ऐसी जमा के खाते से संपन्न आत्मा बहुत निश्चिंत रहती है, बहुत खुशी में रहती है, बहुत दुआएं होती हैं, उसको योग लगाने में मेहनत नहीं लगती, बहुत उमंग उत्साह खुशी नशा उसके चेहरे से उसके चलन से उसके व्यवहार से दिखाई देता है कि उसका खाता जमा है, पुण्य किए हुए हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे पुण्य आत्माएं हैं और बाबा ने हम सबको पुण्य करने की कला सिखाई है, श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं। हम ऐसे श्रेष्ठ मन से वचन से कर्म से तन से मन से धन से करते चलें और करने का कहीं वर्णन न करें, समर्पित करें। वाह बाबा वाह, आपने करा लिया, मेरा भाग्य बना दिया, शुक्रिया बाबा आपका। ओके, ओम शांति।